नमस्कार, मैं अजीत कुमार, बीए द्वितीय वर्ष का छात्र। मैं आपके लिए भारत का संविधान इस पुस्तक, जो कि डॉक्टर डीडी बसु द्वारा लिखित है, इसके अंतर्गत सेवाएं और लोक सेवा आयोग इस पाठ की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। इसमें पहला शीर्षक है संसदीय शासन तंत्र में सिविल सेवकों की स्थिति। कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें संवैधानिक दस्तावेजों में स्थान नहीं दिया जाता, किंतु हमारे संविधान में दिया गया है। इनमें से एक है लोक सेवाएं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने कुछ ऐसे विषयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया जिसे अन्य संविधानों में सामान्य विधान और प्रशासनिक विनियमों के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि हम आधुनिक लोकतंत्रात्मक शासन में लोक सेवकों के महत्व की ओर समुचित रूप से दृष्टिपात करें तो इसका कारण स्पष्ट हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली का एक ध्यान देने योग्य लक्षण यह है कि प्रशासन की नीति का निर्धारण विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री ही करते हैं, किंतु देश का प्रशासन वास्तव में अधिकारियों के एक विशाल समूह द्वारा चलाया जाता है जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता है। राजनीति शास्त्र की भाषा में अधिकारी ही अस्थाई कार्यपालिका बनाते हैं, जबकि मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका बनाते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका विधान मंडल में बहुसंख्यक दल द्वारा चुनी जाती है और जैसे ही उस दल का बहुमत समाप्त हो जाता है वह पद त्याग देती है। अस्थाई कार्यपालिका की नियुक्ति दूसरे प्रकार की होती है और यह आवश्यक रूप से सत्तारूढ़ दल का भाग नहीं होती। यह राजनीति के प्रति तटस्थ रहती है और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखती है। यही सिविल सेवाओं का लक्षण है जो अस्थाई कार्यपालिका गठन करते हैं और इसी प्रकार उन्हें कार्य करने में दक्षता प्राप्त होती है। साधारणतः मंत्री प्रशासन की तकनीक का विशेषज्ञ होने का और प्रशासनिक विभागों के ब्यौरों को जानने का दावा नहीं कर सकता, किंतु सिविल सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार के कार्यकरण में विशेषज्ञ हो। अस्थाई सिविल सेवकों की सहायता से प्रशासन चलाने की प्रणाली में एक अंतर्निहित दोष यह है कि वे लाल फीता और नेमी बातों से बंधे रहते हैं और अन्य विचारों को अपनाने के लिए उनमें उत्साह नहीं होता। राजनीतिक कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए उसे नए विचार आते रहते हैं, किंतु इस अंतर्निहित दोष के होते हुए भी संसदीय शासन प्रणाली में सिविल सेवकों का होना अनिवार्य है। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर संयुक्त प्रवर समिति ने ये संप्रेक्षण किए थे, वह इस प्रकार से है। व्यवहार में सफल होने के लिए उत्तरदायी शासन प्रणाली में एक सक्षम और स्वतंत्र सिविल सेवा का होना आवश्यक है जिसमें ऐसे व्यक्ति हो जो एक के बाद एक मंत्रिमंडलों को अपने अपने दीर्घकालिक प्रशासनिक अनुभव के आधार पर सलाह दे सकें। सदाचरण करते रहने पर अपनी स्थिति के बारे में वे सुनिश्चित रहें। उनसे यह अपेक्षा होगी कि वे उसी नीति को क्रियान्वित करें जो सरकार और विधानमंडल निश्चित करे। कारण यह है कि आधुनिक युग में सरकार चलाना कला नहीं है, यह एक विज्ञान है, इसलिए यह विशेषज्ञों का काम है। अतएव यह काम सरकारी सेवकों की उस विशाल सेना को सौंप दिया गया है जिन्होंने सरकार को चलाने के काम को अपनी वृत्ति के रूप में अपनाया है। इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इसलिए आधुनिक लोकतंत्र की एक समस्या यह है कि उन्हें प्रजातांत्रिक प्रणाली को अधिकारी तंत्र अर्थात नौकरशाही में परिणत करने से रोका जाए। इसका उपचार यह नहीं है कि विधानमंडल सरकार के कामकाज को अपने हाथ में ले लें। प्राचीन राज्यों में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था वह आधुनिक दशाओं में कर पाना असंभव है। इसका यह उपचार भी नहीं है कि मंत्री या विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष प्रशासन का वास्तविक कार्य अपने हाथ में ले ले। प्रशासन का वास्तविक कार्य नीति निर्धारण से भिन्न है। जैसा हम पहले बता चुके हैं, यह कार्य तकनीक की तो है ही, वह भीमकाय भी है। यदि मंत्री दैनिक प्रशासन के ब्यूरो की बात में जाएंगे तो वे अन्य व्यापक महत्व की बातों को और राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को अपने दृष्टि से ओझल कर देंगे। इसके पश्चात हम अगले शीर्षक को पढ़ रहे हैं, जिसका जो शीर्षक इस प्रकार से है, विषय जिनके विनिमय की आवश्यकता है। इस समस्या के उचित समाधान के लिए एक दो सही व्यक्तियों का चयन होना चाहिए, जो न केवल दक्ष हों बल्कि ईमानदार भी हों, और जिन पर यह विश्वास किया जा सकता है कि वे अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष बने रहेंगे, क्योंकि उनका अपना कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक झुकाव नहीं है तथा तत्समय शासनारूढ़ सरकार द्वारा बनाई नीतियों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरे, उन्हें अनुशासन में रखा जाना चाहिए, जिससे वे अपने नियोजक से अर्थात राज्य से उचित संबंध बनाए रखें। तीसरे, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अनुशासन के नियमों को भंग करने पर उन पर समुचित विभागीय कार्रवाई की जा सकती है और विधि को भंग करने पर वे उत्तर देने के लिए न्यायालयों के समक्ष लाए जा सकते हैं। जब एक बार राज्य के हितों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा, तब यह आवश्यक होगा कि लोक सेवकों की पदावधि भी सुनिश्चित हो, जो पूर्वगामी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि सर्वोत्तम गुणों वाले लोग तब तक आकर्षित नहीं होंगे जब तक कि शक्ति का प्रयोग करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को पद से हटाने और अनुशासन संबंधी मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध युक्तियुक्त प्रभुति न हो। ये सभी उद्देश्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब कुछ निश्चित नियम हो और समुचित रक्षोपाय भी हो। इन्हें मोटे तौर से लोक सेवकों की सेवा की शर्तें कहा जाता है और हमारे संविधान में उसके आधारभूत सिद्धांतों को अधिकथित किया गया है। अगला शीर्षक है, सेवा की शर्त विहित करने की शक्ति। हमारे संविधान में लोक सेवा से संबंधित प्रत्येक मामले के बारे में ब्यौरेवार उपबंध नहीं किए गए हैं। संविधान के निर्माताओं ने यह अनुभव किया कि यह व्यवहारिक नहीं होगा और इसलिए संघ और राज्यों के लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को समुचित विधानमंडल द्वारा अधिनियमों द्वारा विनियमित किए जाने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसा विधान बनने तक ये विषय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा संघ और राज्य की सेवाओं के संबंध में नियमों द्वारा विनियमित किए जाएंगे। यह बात अनुच्छेद 309 में लिखी गई है। एक बार जहां विधायिका किसी विधि के अधिनियम के लिए हस्तक्षेप कर देती है, कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति बिल्कुल से समाप्त हो जाती है और विधायिका के अधिनियम को अनुच्छेद 309 के अधीन कार्यपालिका द्वारा बनाए गए किसी नियम पर अग्रता प्राप्त होगी, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता जिससे निहित अधिकार पर प्रभाव पड़ता हो या उसका हास होता हो। तथापि इन नियमों में विधि की समान शक्ति होती है। यद्यपि कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, किंतु इस क्षेत्र का अधिकांश भाग सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से ही आच्छादित है। इनमें से कुछ तो संविधान के अधीन बनाए गए हैं और कुछ इसके पहले के विद्यमान नियम हैं, अर्थात भारत शासन अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा अतिष्ठित किए जाने तक प्रवृत्त रहेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि इस निमित्त बनाए गए कोई नियम या विधान मंडल का अधिनियम विधि मान्य नहीं होगा यदि उसके उपबंध संविधान के प्रतिकूल हैं। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे न्यायालयों ने बहुत से सेवा नियमों को इस आधार पर शून्य घोषित किया है कि वे संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई नियम या आदेश सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसी सरकारी सेवक को सुनवाई का अवसर दिए बिना पदच्युत कर सकती है, तो ऐसा नियम अनुच्छेद 311 क्लोज 2 की उपेक्षाओं का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक होगा और विखंडित किया जा सकेगा। हमारे संविधान के दो विषयों के बारे में अधिष्ठाई उपबंध किए गए हैं, वे हैं क, लोक सेवकों की पदावधि और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, ख, लोक सेवा आयोगों का गठन और उनके कृत्य। ये स्वतंत्र निकाय हैं जो सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को सलाह देते हैं। इसके बाद हम अगला शीर्षक पढ़ेंगे है, वह है पदावधि, अर्थात उस पद की अवधि। हमने ब्रिटिश प्रणाली से यह सूत्र वाक्य ग्रहण किया है कि सभी सेवाएं सम्राट के प्रसाद पर्यंत होती हैं। हमारे संविधान में यह प्राथमिक रूप से घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संघ या राज्य के अधीन कोई पद धारण करता है, सिविल या सैन्य, वह यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यह बात अनुच्छेद 310 के क्लोज 1 में लिखी गई है। सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति करना इस अनुच्छेद में समाविष्ट प्रसाद पर्यंत के सिद्धांतों के पक्षों में से एक है। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी समय किसी भी आधार पर पदच्युत किया जा सकता है और इस प्रकार सदोष पदच्युति के आधार पर कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होगा। इसका अपवाद वही होगा जहां पदच्युति संविधान में दिए गए रक्षोपायों के उल्लंघन में की गई हो, जैसा ऊपर बताया गया है। अगला शीर्षक है संविधा द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता। किसी सरकारी सेवक को पदच्युत करने के सरकार के अधिकार पर किसी संविधा द्वारा बंधन नहीं लगाया जा सकता, और यदि ऐसी कोई संविधा की जाती है तो वह संविधान के अनुच्छेद 310 क्लोज 1 के उल्लंघन में होने के कारण शून्य होगी। इस अनुच्छेद में प्रसाद पर्यंत सेवा का सिद्धांत समाविष्ट है। ये नियम अनुच्छेद 310 क्लोज 2 में विनिर्दिष्ट अपवाद के अधीन हैं, अर्थात यदि सरकार किसी तकनीकी कर्मचारी या विशेषज्ञ की जो नियमित सेवाओं में नहीं है सेवाएं प्राप्त करना अनावश्यक समझती है, तो यह विशेष संविदा कर सकेगी जिसके बिना ऐसे व्यक्ति का नियोजन सरकार के अधीन नहीं हो सकता। ऐसी दशा में यदि अवधि की समाप्ति से पहले उसकी सेवाओं का प्रवसान कर दिया जाता है तो संविदा में उपलब्ध होने पर उसे प्रतिकर दिया जाएगा। किंतु ऐसी दशा में यदि संविदा की अवधि के भीतर कदाचार के आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। प्रतिकर तभी देय होगा, पहला, यदि संविदा की अवधि के अवसान के पूर्व पद समाप्त कर दिया जाता है, या ख, यदि उस व्यक्ति की से संविदा की अवधि के अवसान से पूर्व पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है और इसका कारण कदाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला शीर्षक है प्रसाद के प्रयोग की मर्यादाएं। इंग्लैंड में सम्राट के प्रसाद पर कोई बंधन नहीं है, किंतु भारत का संविधान इस प्रसाद को कुछ अपवादों और मर्यादाओं में बांधता है। अगला शीर्षक है कुछ उच्च अधिकारों के मामलों में अपवाद। कुछ उच्च अधिकारों की दशा में संविधान में उनकी सेवाओं का परिवशान करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिकथित है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्रमशः अनुच्छेद 124, 148, 218 और 324 में अधिकथित रीति से ही उनके पद से हटाया जा सकता है। ये पद इस साधारण नियम के अपवाद होते हैं कि सरकारी सेवक प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। दूसरा, अगला शीर्षक है सिविल सेवकों के लिए रक्षोपाय। सभी सरकारी सेवक यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु सिविल सेवकों की पदावधि की प्रतिभूति के रूप में दो प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का उपबंध किया गया है। ये सैनिक कर्मचारियों से भिन्न हैं, अर्थात पहला, कोई भी सिविल सेवक उसकी नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि उसे सेवा से हटाया जाना है तो हटाए जाने से पहले उसकी नियुक्त करने वाला प्राधिकारी या उसके तत्समान रैंक का कोई अधिकारी इस बात पर विचार करेगा। इस उपबंध का उद्देश्य लोक सेवा को कनिष्ठ रैंक के अधिकारियों की मनमानी से बचाता है। यह बात अनुच्छेद 311 के क्लोज नंबर 1 में लिखी गई है। दूसरा, संविधान ने जो अन्य प्रतिभूति दी है वह यह है कि किसी भी सिविल सैन्य सेवक के विरुद्ध कोई पदच्युति का, हटाए जाने का या पंक्ति में अवनत किए जाने का आदेश तभी दिया जा सकेगा जबकि उसके विरुद्ध आरोपों की बाबत उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो। 1976 के पहले यह अवसर दो चरणों में दिया जाता था, पहला आरोप की जांच के चरण पर और दूसरा जांच समाप्त हो जाने के पश्चात। जब कर्मचारी को आरोप का दोषी ठहराया जाए तब उसके पश्चात प्रस्तावित शक्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के चरण पर अर्थात पदच्युति, हटाया जाना, पंक्ति से अवनत किए जाने या निंदा के विरुद्ध। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावित शस्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के कर्मचारी के अधिकार का लोप कर दिया है, किंतु यह रक्षोपाय अभी है ही कि जांच के चरण में दिए गए साक्ष्य के आधार पर ही प्रस्तावित शस्ति अधिरोपित की जा सकेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1976 के पूर्व के न्यायिक विनिश्चय जिनमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद 311 क्लोज नंबर 2 के अधीन अवसर दो चरणों में दिया जाना चाहिए, 42वें संशोधन द्वारा अतिष्ठित कर दिए गए हैं। अतएव 1976 के संशोधन के पश्चात युक्तियुक्त अवसर अभिव्यक्ति का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसमें यह विवक्षा है कि सिविल सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करने वाली सरकार या अन्य प्राधिकारी, पहला, उसके आरोप से इनकार करने और अपना निर्दोष होना साबित करने का अवसर दे। यह तभी हो सकता है जबकि उसे यह बताया जाए कि उसके विरुद्ध आरोप क्या है और किन अभिकथनों पर वे आरोप आधारित हैं। दूसरा, उसे उन साथियों की प्रति परीक्षा करके और स्वयं अपनी परीक्षा करके या प्रतिरक्षा की पुष्टि में किसी अन्य साक्ष्य की परीक्षा करके अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिया जाए। अतएव प्राधिकारी को, पहला, पूर्ण विशिष्टों के साथ विनिर्दिष्ट आरोप लगाना होगा, दूसरा, संबद्ध सरकारी सेवक को उन आरोपों की संसूचना देनी होगी, तीसरा, उन आरोपों का उत्तर देने का अवसर देना होगा, चौथा, उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात विनिश्चय करना होगा और पांचवा, अभियुक्त के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने के पहले नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन करना होगा। जहाँ किसी कर्मचारी को अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है किंतु वह जानबूझकर उस अवसर का फायदा नहीं उठाता, वहाँ कोई जांच करना आवश्यक नहीं है, जैसा कि उस फरार कर्मचारी की पदच्युति के मामले में किया गया था जो कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दे सका कि उसकी सेवाएं पदच्युति के रूप में क्यों न समाप्त कर दी जाएं, क्योंकि उसका आगे सेवा में बने रहना वांछित नहीं था। किंतु यह तब लागू नहीं होगा जब सरकार द्वारा निर्वाह भत्ता न दिए जाने के कारण वह जाँच के लिए हाजिर नहीं हो सका है। जहाँ जांच अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, वहाँ औपचारिक कर्मचारी को जांच अधिकारी के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। यह अनुशासनिक अधिकारी अपना निर्णय दे इसके पहले हो जाना चाहिए। यह प्रतिरक्षा के अधिकार का अंग है। अगला शीर्षक है किन मामलों में अवसर दिया जाना चाहिए। यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हो जाती हैं तो जांच की जानी चाहिए और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। पहला, कर्मचारी संघ की किसी सेवा या किसी अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की किसी सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है। दूसरा, ऐसे कर्मचारी को पदच्युत किया जा रहा है या हटाया जा रहा है या पंक्ति में अवनत किया जा रहा है। पदच्युत किया गया व्यक्ति सरकार के अधीन पुनः नियोजन के लिए अपात्र हो जाता है, किंतु हटाए गए व्यक्ति के साथ ऐसी कोई निर्हरता नहीं है, किंतु पदच्युति और हटाए जाने में दो तत्व सामान्य हैं। क, दोनों शास्तियाँ इस आधार पर दी जाती हैं कि सरकारी सेवक का आचरण दोषयुक्त है या उसमें कोई कमी है। ख, दोनों में परिणाम स्वरूप शास्ति होती है, जैसे वेतन भत्ता या पहले की गई सेवाओं के लिए अर्जित पेंशन के अधिकार का जब्त किया जाना। अगला शीर्षक है पदच्युति, हटाया जाना और पंक्ति में अवनति क्या है। जब ऐसी कोई आत्यंतिक शास्ति नहीं होती है तो पदच्युति या हटाया जाना नहीं होता, अर्थात जहां कोई सरकारी कर्मचारी को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है और उस आदेश के साथ कोई अन्य दंड नहीं है। उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से यह प्रकट होता है कि अधिकारी की सेवा समाप्त करने वाले आदेश में वास्तव में जिस पद्धति का प्रयोग किया गया है वह निश्चायक नहीं है। यदि आदेश दंड के परिणाम स्वरूप है तो यदि उसमें सेवोन्मुक्त या छटनी शब्दों का प्रयोग किया गया है तो भी यह पदच्युति या हटाया जाना होगा। अस्थायी कर्मचारी की उसी हमले के दांडिक विचारण में लंबित रहने के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त किए जाने को दांडिक माना गया, जो पदच्युति की कोटि में आता है। अनुच्छेद 311 क्लोज नंबर 2 को लागू करने के लिए सेवा का पर्यवसान सिविल सेवा की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। अतएव सेवा के पर्यवसान के निम्नलिखित आदेशों को पदच्युति या हटाया जाना नहीं माना गया है। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है, नियोजन की संविदा के निर्बंधनों के अनुसार पर्यवसान। ख है, सरकारी सेवक को लागू सुसंगत विभागीय नियमों में समाविष्ट सेवा की शर्तों के अनुसार सेवा का पर्यवसान, परंतु यह तब जबकि ऐसी शर्तें संविधान के उपबंधों से असंगत न हों। अधिवर्षिता या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कोई आयु तय करना और उसका प्रवर्तन। पंक्ति में अवनति से अभिप्रेत है अधिकारी की पंक्ति या प्रास्थिति में कमी किया जाना जो शास्ति के रूप में हो। इसके दो तथ्य होते हैं, क, भौतिक अर्थ में अवनति अर्थात नीचा किया जाना, ख, ऐसा नीचा किया जाना या पदावधि शास्ति के रूप में हो। क, भौतिक अर्थ में पंक्ति में अवनति तब होती है जब सरकारी सेवक किसी निम्नतर या निम्न वेतनमान में रख दिया जाए। वेतनमान में यदि उसे घटाकर निम्नतर प्रक्रम में रखा जाता है तो यह पंक्ति में अवनति होगी, क्योंकि अधिकारी अपनी पंक्ति को खो देगा या अधिष्ठाई पंक्ति में ज्येष्ठता में अपना स्थान खो देगा। ख, अवनति की आत्यंतिक प्रकृति के बारे में उच्चतम न्यायालय ने पंक्ति के अधिकार के परीक्षण को उसी प्रकार लागू किया है जैसा पदच्युति या हटाए जाने के मामले में पद का अधिकार परीक्षण लागू किया जाता है। पंक्ति में अवनति तभी लागू होती है जब किसी व्यक्ति का अधिष्ठाई रैंक घटा दिया जाता है। अतः जब किसी सरकारी सेवक को किसी विशिष्ट रैंक का अधिकार होता है तब उसके रैंक का नीचा किया जाना शास्ति के रूप में समझा जाएगा और अनुच्छेद 311 क्लोज 2 लागू होगा। जैसे किसी अधिकारी को जो अधिष्ठाई हैसियत में कोई स्थान पद धारण करता है अनुच्छेद 311 2 का पालन किए बिना किसी निम्नतर पद पर अंतरित नहीं किया जा सकता। दूसरा, यदि किसी सरकारी सेवक को नियोजन की संविदा या सेवा की शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति पंक्ति का कोई हक नहीं होता है तो अनुच्छेद 311 2 के अर्थांतर्गत पंक्ति की अवनति सामान्यता नहीं होगी। उदाहरण के लिए जहां कोई व्यक्ति स्थानपन्न रूप से या कानूनी भर्ती नियमों के प्रतिकूल किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है और बाद में अपने अधिष्ठाई पद पर वापस आ जाता है, क्योंकि यह न तो दंडात्मक होता है और न ही अवैध, किंतु ऐसे मामले में भी यदि वापस किया जाना दंड स्वरूप है, जैसे भविष्य में प्रोन्नति के अवसरों को मुतलवी करना या यदि आदेश में कोई कलंक है जिससे यह मालूम होता है कि यह दंड के रूप में है, तो वापस करने का यह आदेश पंक्ति की अवनति समझा जाएगा और अनुच्छेद 311 क्लोज 2 लागू होगा। यदि इस प्रकार के दंड की कोई बात न हो तो प्राधिकारी के मंतव्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के पदों के लिए अतिरिक्त अहर्ताएं और कार्य थोप कर उनके पुष्ट पदों से उनका प्रतिवर्तन अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करेगा। अब हम संविधान का अनुच्छेद 323 क और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 को समझने का प्रयास करेंगे। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सेवाओं से संबंधित संवैधानिक विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। इसके द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद 323 क अंतः स्थापित किया गया है जिससे संघ और राज्य की लोक सेवाओं की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के हाथों से लेकर यथास्थिति संघ या राज्य के प्रशासनिक अधिकरणों के हाथों में सौंप दिया जाए। संविधान का यह उपबंध तभी प्रभावी होना था जब उसे संसद की विधि द्वारा लागू किया जाता। संसद ने 1985 में एक अधिनियम बनाया जिसे 2 अक्टूबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करके लागू किया गया। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संघ के क्रियाकलाप से संबंध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा आदि शर्तों की बाबत विवाद और परिवाद का न्याय निर्णयन करेगा। इसके अपवाद निम्नलिखित हैं। पहला, क, प्रतिरक्षा बलों के सदस्य। ख, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक। ग, संसद या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के सचिवालय के कर्मचारी वृंद के सदस्य। इन प्रवर्गों को छोड़कर संघ का कोई भी लोक सेवक जो नियुक्ति हटाए जाने या पंक्ति में अवनत किए जाने या इसी प्रकार के किसी विषय से व्यथित है अब अधिकरण से प्रशासनिक न्याय प्राप्त कर सकेगा, न्यायालय से नहीं। अंतिम आश्रय के रूप में व्यवस्थित व्यक्ति केवल एक ही न्यायालय में जा सकेगा, अर्थात उच्चतम न्यायालय में, अनुच्छेद 32 और 136 के अधीन। अतएव प्रशासनिक अधिकरण के विनिश्चयों को उच्चतम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 या 227 के अधीन हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं है। किंतु तत्पश्चात स्थिति बदल गई, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 323 क खंड 2 क्लोज घ और 323 ख खंड 3 क्लोज घ और उनके अनुसरण में अधिनियमित विधायनों में अधिकारिकता के अपवर्जन के खंडों को उस सीमा तक असंवैधानिक घोषित कर दिया जहां तक वे अनुच्छेद 226, 227 और 32 के अधीन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता को अपवर्जित करते थे। अगला शीर्षक है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यदि संप्रिक्त राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित संकल्पों के अनुसरण में संसद ऐसे संयुक्त लोक सेवा आयोगों का उपबंध करती है तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकेगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग भी किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 315 में लिखी गई है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें संघ या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाएंगी, परंतु आयोग के किसी सदस्य की सेवा की शर्तें नियुक्त के पश्चात उसके लिए अलाभकर रूप से परिवर्तित नहीं की जाएंगी। अगला शीर्षक है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संघ और संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आयोग के यथाशक्य आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक कोई पद धारण किया है। यह बात अनुच्छेद 316 में लिखित है। आयोग के सदस्य की पदावधि संघ आयोग की दशा में पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होगी और राज्य आयोग की दशा में या संयुक्त आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगी। किंतु किसी सदस्य की पदावधि का निम्नलिखित रीति से इसके पहले पर्यवसान किया जा सकेगा। पहला है संघ या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र द्वारा या राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल को संबोधित लिखित पद त्यागपत्र द्वारा। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर यदि सदस्य दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर कोई सवेतन नौकरी करता है या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य से पीड़ित है, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय इस विषय में राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्देश पर जांच करेगा। राज्य आयोग की दशा में राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय को निर्देश कर सकता है और उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के अनुसरण से हटाने का आदेश दे सकता है। राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर राष्ट्रपति के अंतिम आदेश के लंबित रहने पर निलंबित करने का अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है। यह बात अनुच्छेद 317 के क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 में लिखी गई है। यदि अनुच्छेद 317 एक के अधीन उच्चतम न्यायालय में निर्देश लंबित है तभी सदस्य की पदावधि समाप्त हो जाती है तो भी न्यायालय निर्देश का उत्तर देगा, निर्देश विफल नहीं होगा। कोई सदस्य कदाचार का दोषी समझा जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से की गई किसी संविदा में संपृक्त या हितबंध है या यदि वह ऐसी संविदा या करार के किसी लाभ में या उसमें उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धियों के भाग लेता है। यह किसी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से प्राप्त फायदे को लागू नहीं होगा। यह बात अनुच्छेद 317 क्लोज नंबर 4 में लिखित है। संविधान में लोक सेवा आयोग को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को संविधान में विनिर्दिष्ट आधार पर और उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 318 का परंतुक है। आयोग का व्यय भारत की या राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। यह बात अनुच्छेद 322 में लिखित है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सरकार के अधीन भावी नियोजन की बावत कुछ नियोग्यताएं हैं, अतः ऐसे सदस्य न रहने पर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। ये बातें हम आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। संक्षेप में सरकार के अधीन नियोजन के विरुद्ध संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की दशा में वर्जना अत्यंतिक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ अथवा राज्य आयोग के अन्य सदस्यों की दशा में लोक सेवा आयोग में उच्चतर पद पर नियोजन किया जा सकता है, किंतु आयोग के बाहर नहीं। लोक सेवा आयोग सलाहकारी निकाय है। सरकार को यह छूट है कि वह इसकी सिफारिश स्वीकार करे या उसे विचलन करे। अगला शीर्षक है लोक सेवा आयोगों के कृत्य। संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला, क्रमशः संघ की सरकार और राज्य की सरकारों में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करना। ख, उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर जिसे यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल समुचित आयोग को निर्देशित करे परामर्श देना। यह बात अनुच्छेद 320 में लिखित है। ग, संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में या किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं की बाबत ऐसे अतिरिक्त कृत्य करना जो संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाएं। यह बात अनुच्छेद 321 में लिखित है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रतिवर्ष यथास्थिति संघ या राज्य के आयोग द्वारा किए गए कार्य का प्रतिवेदन देना। यह बात अनुच्छेद 323 में लिखित है। अंग, यदि संघ लोक सेवा आयोग के कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो इसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें। यह बात अनुच्छेद 320 क्लोज नंबर 2 में लिखित है। च, यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग में ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित के विषय में परामर्श किया जाएगा। क, सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर। ख, सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर। ग, ऐसे व्यक्ति पर जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन याचिकाएं हैं। घ, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके संबंध में जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत के सम्राट के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा उसके द्वारा उपगत खर्च का यथास्थिति भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए। अगला शीर्षक है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। जैसा हम पहले बता चुके हैं संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। यह बात अनुच्छेद 323 के क्लोज नंबर 1 में लिखित है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को प्रतिवेदन दे और राज्यपाल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। यह बात अनुच्छेद 323 के क्लोज नंबर 2 में लिखित है। अगला शीर्षक है, कहां तक आयोग की सलाह सरकार पर आबद्ध कर है। जैसा पहले बताया जा चुका है, लोक सेवा आयोग का कृत्य सलाहकारी है और संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अनुसार सरकार को आयोग की सलाह पर कार्य करना आबद्ध कर हो। कारण यह है कि संसदीय शासन प्रणाली में देश के उचित प्रशासन के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी है और उसका उत्तरदायित्व संसद के प्रति है, इसलिए वे किसी अन्य निकाय की राय अपने पर आबद्ध करने अपने उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं पा सकते। इसका दूसरा पक्ष यह है कि सेवा आदि में भर्ती के संबंध में विशेषज्ञों की राय लेना मंत्रियों के लिए लाभकारी होगा। सर सैमुअल ने भारत शासन अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग में इसके समानांतर उपबंधों का औचित्य बताते हुए कहा है कि अनुभव से यह पता चलता है कि यदि वे सलाहकारी हों तो उनका प्रभाव अधिक होगा, यदि उन्हें आज्ञापक शक्ति दे दी जाए तो इसमें खतरा यह है कि दो सरकारें बन जाएंगे। साइमन आयोग इस तथ्य के प्रति सजग था, यदि मंत्रियों पर ही छोड़ दिया जाए तो वे अपने पद का उपयोग करके सेवाओं की दक्षता या न्यायोचित प्रशासन के स्थान पर अपने कुटुंब या जाति के हितों को बढ़ावा देंगे। सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा करने के विरुद्ध भारत शासन अधिनियम 1935 में कोई रक्षोपाय नहीं था। ऐसे दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए संविधान ने यह रक्षोपाय किया है कि आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। जब प्रतिवेदन रखा जाएगा तब सरकार पर यह बाध्यता होगी कि वह यह बताए कि किस कारण से किसी विशिष्ट मामले में सरकार ने आयोग की सिफारिश अस्वीकार कर दी। आयोग की सलाह अस्वीकार करने के लिए स्पष्टीकरण संसद को दिए जाने की बाध्यता के कारण ऐसे मामले कम से कम होंगे। अगला शीर्षक है, सिविल सेवकों के मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 के अधीन संसद को यह शक्ति है कि वह सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों को लागू होने में मूल अधिकारों का उपांतरण कर सकती है। इसके अधीन रहते हुए संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं और लोक सेवक भी इसके अंतर्गत हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार का सिविल कर्मचारी मूल अधिकारों के संरक्षण का अर्थात अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 20 आदि का वैसे ही हकदार है जैसा कि कोई अन्य नागरिक। इस प्रकार से जब सरकारी सेवक के विरुद्ध जांच का आदेश दिया गया था तब अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित दो नियम प्रवृत्त थे और जांच का आदेश ऐसे नियमों के अधीन दिया गया था जो अधिक कठोर और सरकारी सेवकों के हितों के प्रतिकूल थे, तो ऐसी कार्यवाहियां अनुच्छेद 14 का अतिलंघन करने के आधार पर विखंडित कर दी गईं। दूसरे शब्दों में यदि दो सरकारी सेवकों के विरुद्ध जो एक सी परिस्थिति में हैं कार्यपालक प्राधिकारी के विवेकानुसार पर्याप्त रूप से भिन्न प्रक्रिया के अनुसार जांच करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसे विवेक का प्रयोग किसी ऐसे सिद्धांत के अनुसार नहीं है जिसका जांच के प्रयोजन से कोई संबंध हो, तो वह आदेश जिसमें उपलब्ध दो मार्गों में से वह मार्ग चुना गया है जो आवेदक के लिए प्रतिकूल है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा। अनुच्छेद 19 के अधीन लोक सेवक के अधिकारों पर निर्बंधन खंड 2 से खंड 6 में विनिर्दिष्ट आधारों पर विनिर्दिष्ट किया जाता है, और वह भी उसी सीमा तक जहाँ तक कि निर्बंधन युक्तिसंगत हो। लोक सेवक को नागरिक के रूप में मूल अधिकार हैं, किंतु राज्य को भी अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन सेवा की शर्तों का विनिमयन करने की शक्ति है। राज्य के अधीन सेवा के हित में दक्षता, ईमानदारी, निष्पक्षता और अनुशासन आदि गुणों की आवश्यकता होती है। राज्य को यह संवैधानिक शक्ति है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक लोक सेवक में ये गुण है, और जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं है उन्हें लोक सेवा में आने से निवारित करें। अतएव यह प्रतीत होता है कि लोक सेवक की सेवा की शर्तों द्वारा राज्य द्वारा विनिमयन करके मूल अधिकारों को निर्बंधित करना उस विस्तार का विधि मान्य होगा। जहाँ तक ऐसा निर्बंधन दक्षता, ईमानदारी, निष्पक्षता, अनुशासन, उत्तरदायित्व और इसी प्रकार के हित में युक्ति मुक्त रूप से आवश्यक हो, ये सब बातें ऐसी होनी चाहिए जिनका लोक सेवा की शर्तों से सीधा निकट का और तर्कसंगत संबंध हो। इसके अतिरिक्त साधारण आधारों पर भी निर्बंधन उसी प्रकार लगाए जा सकते हैं जैसे अनुच्छेद 19 के अधीन लोक व्यवस्था है, जैसे अन्य नागरिकों पर अधिकार। इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।